मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 4 दिसंबर 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मनोज कुमार मीना रावत भाटा राजस्थान से, आफताब अली इरशाद अली बांदा उत्तर प्रदेश से और प्रदीप सिंह धाकड़ मुरैना मध्य प्रदेश से। तो मनोज, आफताब और प्रदीप, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की ओर से, मैडम और अपनी ओर से बधाई देता हूं आशीष कुमार को जो भागलपुर के हैं, जिन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्री को क्वालिफाई किया है। आशीष, बहुत बहुत बधाई और हम सभी की तरफ से भविष्य की सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी कि वह आपको आगे के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करें। फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है और आप जानते हैं कि फ्राइडे को मैं याद दिलाने के लिए आप लोगों को कुछ सूचनाएं देता हूं जो लगातार लंबे समय से इससे जुड़े हुए हैं, वो तो उस सूचना से वाकिफ हैं, लेकिन चूंकि नए नए स्टूडेंट्स लगातार जुड़ते चले जाते हैं इसीलिए लगता है कि उन्हें बताया जाना चाहिए, तो इस दोहराव के लिए माफ करेंगे। और सूचना यह है कि सैटरडे और संडे होने की वजह से आने वाले 2 दिनों में डेली ऑडियो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन नॉलेज सेंटर पर सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी जिस तरीके से अभी मिलती हैं। साथ ही सैटरडे को आपको योजना और कुरुक्षेत्र, हिंदी और इंग्लिश दोनों योजना कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, ये भी नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी सूचनाएं थी। अब हम लोग आते हैं विधिवत तरीके से अपने ऑडियो के फर्स्ट चरण पर और वो है लाइफ मैनेजमेंट का चरण। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग फिल्म तमाशा के बारे में बातें कर रहे हैं। आप लोगों में से भी कई लोगों ने ये फिल्म देखी और मेरे पास आप लोगों के फीडबैक भी आए हैं कि फिल्म को देखने के बाद बहुत सी चीजें आपको उसकी अच्छी लगी, आप लोगों ने तारीफ की हैं, आप लोगों को फिल्म में लाइफ मैनेजमेंट की या लाइफ फिलॉसफी की बहुत सी डीप चीजें जानने को मिली हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि ऐसे और खासकर जो लास्ट पेपर जनरल स्टडीज 4th का होता है, एथिक्स का पेपर, उसके लिए भी बहुत सा कंटेंट मिला है। दोस्तों, सच पूछे तो सिविल सर्विस की तैयारी होती ही इसी तरीके से है कि पता नहीं कब की देखी, कहां की पढ़ी हुई चीज और किस तरीके से हमारे काम आ जाती है। सच पूछे तो काम तो बहुत सी चीजें आती ही है, बस हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। मित्रों, तमाशा फिल्म के बारे में जो मैं आज स्पेशली आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, जिसके बारे में मेरे पास मेल भी आए हैं, वो ये कि उस फिल्म में आप देखते हैं कि जो उसका नायक है, जो हीरो है, जो रणबीर कपूर है, वो अंततः सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर से वो अपने उसी क्षेत्र में चले जाते हैं जो उनके मन के बड़ा करीब होता है, जिसको वो बचपन से चाहते थे, यानी कि वो तमाशा दिखाने लगते हैं, यानी कि एक तरह से वो एक्टर बन जाते, स्टेज आर्टिस्ट बन जाते हैं। यहां से उस फिल्म का समापन होता है और वो फिर बड़े खुश नजर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इतने जद्दोजहद के बाद उन्होंने अपने जीवन की उस स्थिति को प्राप्त कर ली, उस चीज को हासिल कर लिया जो वास्तव में वो चाह रहे थे। और स्वाभाविक है कि जब हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, तो मन में प्रसन्नता का होना बट नेचुरल है। आप खुश होंगे, बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, जिंदगी से शिकायत नहीं रह जाएगी, ऊब खत्म हो जाएगी, जिंदगी बेहतर लगने लगेगी, ये सारी चीजें बड़े स्वाभाविक तौर पर होती हैं। लेकिन मित्रों, वो एक, याद रखिए कि वो एक कहानी है। जो भी राइटर होता है, विचारक होता है, वो अपनी बात को किसी तरह किसी तरीके से पेश करता है। लेकिन जब हम उस कहानी से निकलकर और लाइफ के एरिया में एंटर करते हैं दोस्तों, तब चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। बदल इस रूप में जाती है, मैं यहां दो बातें आप लोगों से विशेष रूप से शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि आप किसी चीज को बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, आपको लगता है कि ये मिल जाए तो बस जिंदगी मिल जाएगी, और वो मिल भी जाती है। लेकिन जब वो मिल जाती है तो क्या वास्तव में जिंदगी मिल जाती है? कुछ दिनों तक तो आपको लगेगा वाकई की जिंदगी मिल गई, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं और ईश्वर को आप धन्यवाद देंगे। लेकिन मित्रों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ समय के बाद वही चीज फिर बासी पड़ने लगती है, उसका टटकापन खत्म हो जाता है, और जिसको आप अभी तक अपने लिए वरदान समझ रहे थे, धीरे 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 आप उसको अपने लिए एक दुष्चक्र समझने लगते हैं, जैसे कि आप इसमें फंस गए हैं और फिर से एक नएपन की कामना की तरफ आप आगे बढ़ते हैं कि कुछ नया हो जाए। मित्रों, ये मैं फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये जिंदगी की बात कर रहा हूं। आप खुद सोच करके देखिए, चलिए बड़ी बड़ी चीजों को तो अब आप अभी फिलहाल हम छोड़ते हैं, अपनी जिंदगी की उन छोटी छोटी बातों को याद कीजिए, उन छोटी छोटी घटनाओं को, उन छोटी छोटी चाहतों को याद कीजिए जो आप चाहते थे कि ये मिल जाए, और वो आपको मिल गई, और मिलने के कुछ दिनों के बाद उसके साथ आपका जो संबंध है, जो आपका व्यवहार है, वो कैसा रहा? क्या वो अब भी पहले जैसा ही रहा, उस समय जैसा जबकि आप उसको बेतहाशा बहुत ही जबरदस्त तरीके से चाहते थे? क्या अब भी आप उसको उतने ही जबरदस्त तरीके से चाह रहे हैं, उतनी ही गहराई से चाह रहे हैं, उतने ही घनिष्ठता के साथ उससे जुड़े हुए हैं, उसको लेकर के आपके अंदर भी उतनी ही गर्मी बनी हुई है? आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो ताप है, जो संबंधों की जो गर्मी है, जो चाहत की गहराई है, वो धीरे धीरे उथली पड़ने लगती है, ठंडी होने लगती है। तो मित्रों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जीवन का एक बहुत विचित्र किस्म का सूत्र है मित्र। वो सूत्र ये है कि जब हम किसी भी चीज के यूज टू हो जाते हैं तो हमारी चेतना अपनी सतर्कता खत्म कर लेती है और वह उसकी आदतन हो जाती है, वो चीजें वो हम आदतन करने लगते हैं, और जब फिर वो चीज आदत में हमारे शुमार हो जाती है तो इस बात का एहसास ही खत्म हो जाता है कि ऐसी कोई अलग से चीज हमारे पास है भी। आप पैसे वालों को देखिए, कुछ समय के बाद पैसे का महत्व खत्म हो जाता है। पद वालों को देखिए, कुछ समय के बाद पद का महत्व खत्म हो जाता है। प्रेमी प्रेमिकाओं को देखिए, एक दूसरे को बेतहाशा चाहते हैं, और जब जैसे ये प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी बनते हैं, कुछ समय के बाद उनका भी वो जो प्रेम है, प्रेम की जो गर्मी है, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। जिंदगी चलती है वो बात अलग है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है वो तीव्रता कम हो जाती है। तो दोस्तों, पहली बात तो यह कि यह होता है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि जो हम चाहते हैं, कितने लोगों को वही चीज मिलता है? चलिए हम प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रोफेशन से हम जिंदगी भर जुड़े रहते हैं। मान लीजिए कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं, बहुत लोग बनते ही हैं, ज्यादातर लोग नहीं भी बनते हैं, या और लोग बाकी कुछ कुछ बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है, और उसमें से बनते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, वही बनते हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन बन जाने के बाद क्या वो उससे इतना जुड़े रह पाते हैं, ये तो पहली बात है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि जो मैं बनना चाहता हूं, क्या वाकई में मैं बन जाता हूं? और अगर मैं नहीं बन पाता हूं, देखिए ज्यादातर लोग तो नहीं बन पाते हैं, सच्चाई यही है, फिर वो एक दूसरा रास्ता तलाश करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा रास्ता हम इसलिए तलाश करते हैं क्योंकि जीवन को अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ चाहिए, वह कुछ न कुछ करेगा ही। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से बिल्कुल साफ साफ कहा कि सभी को अपना धर्म करना है, और धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब जैसे कि अग्नि का धर्म है जलाना, तो अग्नि जलाने का काम करेगी, ये उसका स्वभाव है, ये उसका धर्म है, उसका स्वधर्म है, स्वभाव। तो हमारा ये शरीर है, और हमारे शरीर का धर्म क्या है? हमारे शरीर का धर्म है कर्म करना, और कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि याद रखिए, जो अपने धर्म को नहीं निभाता है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर शरीर कर्म करना बंद कर दे, काम करना खत्म कर दे, रुक जाए, तो शरीर खत्म हो जाएगा, जकड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा और कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा। तो इस जीवन को बनाए रखने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। इसलिए जब हम अपनी पसंद की चीजों को नहीं पकड़ पाते तो फिर हम दूसरी चीजों की तरफ जाते हैं, और यह होना भी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह कि यह जो दूसरी चीज हमें मिली है, जो हमारी पसंद की नहीं है कह लीजिए, या जिसको हमने जबरदस्ती पसंद किया है, या हमारे माता पिता ने, समाज ने जबरदस्ती पसंद कराया है, अब हमारा एक जो व्यावहारिक पक्ष होना चाहिए उसके प्रति वो क्या होना चाहिए? क्या हम उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखें? क्या उसके प्रति हम अपना सेकेंडरी उसको मान करके चले, स्टेप टाइप की मान करके चले, या क्या करें हम उसके लिए? दोस्तों, यहां दो बिल्कुल हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया, और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि वो मिल गया है। अभी आपकी चाहत पूरी हो गई है, लेकिन कुछ समय के बाद इसके साथ भी वही होगा जो अभी इसके साथ होने जा रहा है, जो आपके बिना चाहत की चीज है, वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। तो जो चाहते थे वो मिल गया, फर्स्ट स्टेज है। ऐसे भाग्यशाली बहुत कम लोग होते हैं। और दूसरे स्टेज में कि मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझे करना पड़ा, राइट? तो अब ये जो दूसरी चीज है जिसे मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझे अब करना पड़ रहा है, साथ निभाना पड़ रहा है, यही सच पूछे तो मुझे लगता है कि हमारी अपनी शक्ति की सही परीक्षा है। मित्रों, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं। जो नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जो मिल गया अब मैं उसे अपना बना लूं। और सच पूछिए तो इस धरती पर ज्यादातर लोग जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो इसी आधार पर जी रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे लेकिन ये मिल गया, और जब मिल गया तो उसी को बेतहाशा चाहने भी लगे, और जिंदगी ऐसे ही चलती है। तो मित्रों, जीवन की जो सच्चाई है वो दूसरी वाली ज्यादा है। पहली वाली जो सच्चाई है वो तो बहुत ही टिप पर है, बहुत ही थोड़े से लोगों के साथ वो घटना घटती है, और वह घटना भी फिर ऐसा नहीं कि घटने के बाद फिर वो लगातार अपने उस ताजेपन को बनाए ही रख पाती है, ऐसा नहीं होता है। हां, ये बात अलग है कि चूंकि वो चीज मुझे नहीं मिली है जिसे मैं चाहता था, तो जिंदगी भर मैं यही सोचता रहता हूं कि काश वो मिल जाती तो जिंदगी कितनी बेहतर होती, कितनी खुशनुमा हो जाती, जैसे कि जिंदगी पूरी की तरह से एक स्वर्ग ही बन जाता। इस पछतावे में मैं रहता हूं। लेकिन अगर मुझे अपने इस पछतावे को थोड़ा सा टेस्ट करना है तो मुझे चाहिए कि मैं थोड़ी सी एक कोशिश करूं कि जिनको मिल गई है और वो चाहते ही थे, जरा मैं उनकी जिंदगी में जाऊं और झांक कर देखूं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनसे बात करूं, समझने की कोशिश करूं, तो मेरी तुरंत समझ में आ जाएगा कि उनकी चाहत कहीं भी मुझसे कम नहीं थी, बल्कि सच तो यह है कि मुझसे ज्यादा थी, शायद इसीलिए वो हासिल ही कर पाए। लेकिन क्या अब भी वो चाहत उसी तरीके से है, वही बनी हुई है? मित्रों, गौतम बुद्ध ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, और वो बात यह थी कि दूर से सारे पहाड़ बहुत सुंदर नजर आते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। आप दूर से किसी पर्वत को देखिए तो आपको लगेगा कि जैसे इस पर्वत में हरियाली ही हरियाली है, जहां भी आप कदम रखेंगे, यहां तक कि अपनी उंगली भी रखेंगे तो आपकी उंगली बिल्कुल हरियाली को स्पर्श करेगी, या तो घास का कालीन होगा या कोमल कोमल पौधों की बिल्कुल लाइनें बिछी हुई होंगी। लेकिन जब आप पहाड़ के नजदीक पहुंचते हैं तब आपको पता लगता है कि पेड़ पौधे तो थोड़े से ही हैं, ज्यादा तो वहां चट्टान और पत्थर हैं। उसका रूखापन उस समय आपको दिखाई देता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है मित्रों की, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो बड़ी खूबसूरत नजर आती है दूर से, लेकिन जब मिल जाती है तब फिर उसकी सच्चाई सामने आती है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि सच्चाई ही यही है। उसमें पहाड़ का क्या दोष? पहाड़ का कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरे अपने माइंड का है कि उसने ये इमेजिन कर लिया था कि वहां सब हरियाली ही हरियाली है, या दोष मेरी आंखों का है जो सच्चाई को पूरी तरह से देख नहीं पाती, वो वही देखती है जो वो देखना चाहती है, तो हरियाली देखना चाहती थी, उसे वही कुछ दिखाई दिया। तो दोस्तों, ये जो तमाशा फिल्म है वो सैद्धांतिक रूप से डेफिनेटली एक दूसरी बात हमारे सामने रखती है, लेकिन व्यावहारिक में भी वो एक हमारे सामने जो पक्ष रखती है जो दीपिका के माध्यम से है कि वो भी एंजॉय कर रही है क्रोएशिया में, वो भी जिंदगी को इसी तरह से खिलंदर तरीके से जीना चाहती है, अननोन तरीके से जीना चाहती है, बिल्कुल ओपननेस के साथ जीना चाहती है, लेकिन करती क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ है वो, फिर उसकी एक जीवन पद्धति देखिए, वो एक डिफरेंट जीवन पद्धति है। तो मित्रों जब आप कंप्लीट पूरी संपूर्णता में उस फिल्म को देखेंगे तो उसका मैसेज बिल्कुल दूसरा होगा। इसीलिए मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं से यह अर्ज करूंगा कि ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि जो आप चाहते हैं पाना चाहते हैं वही मिलेगा तभी आप कुछ करेंगे, अदरवाइज जिंदगी नर्क हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। वो मिल जाती है तो बेहतर है, और अगर नहीं मिल जाती है तो दूसरे को उससे कम बेहतर आप बिल्कुल न समझें। उसके साथ भी आप उसी तरीके से निभा सकते हैं जैसे कि आप उसके साथ निभाते, बल्कि सच पूछे तो इस दूसरे के साथ आपका मोह भंग नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में आपने अपने दिमाग में कोई स्वर्ग की तस्वीर नहीं बना रखी थी, बल्कि जो तस्वीर थी वो गलत ही थी। और जब आप पहुंचते हैं तो उससे बेहतर देखने को मिलता है, बेहतर जानने को मिलता है, बेहतर अनुभव होता है, तो आपको ये बेहतर लगना चाहिए। और वहां तो आपने बहुत बेहतर 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 सोच रखा था, और जब आप जाते हैं तो पता लगता है कि वहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वहां मोह जल्दी भंग होता है, ये भी एक सच्चाई है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, और वो है AIR न्यूज की स्टेज। दोस्तों आपने AIR न्यूज सुनी, अभी देश पर जो एक प्राकृतिक विपदा तमिलनाडु के माध्यम से जो आई है वो आप देख रहे हैं कि न्यूज का पूरा हिस्सा लगभग मतलब आधा हिस्सा लगभग लगभग उसी न्यूज से भरा हुआ था। स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़ी बात है वो, और इसको लेकर के आज के नॉलेज सेंटर पर मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, और साथ ही साथ बिजनेस स्टैंडर्ड की भी एक एडिटोरियल क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें उन्होंने इस संकट के कारण बताए हैं। चैनल्स पर भी आप देख रहे होंगे मित्रों, मैंने इससे पहले आपसे बात भी की थी कि जो नेचर है वो अपने तरीके से एक सिस्टम तैयार करती है जो बड़े नेचुरल तरीके से होती है, ऑटोमेटिक है, और उस सिस्टम में नेचर ने ड्रेनेज सिस्टम अपना बना रखा है कि अगर पानी बरसेगा तो कैसे निकलेगा। खासकर चेन्नई के साथ ये हुआ है कि उन्होंने उस सारे के सारे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है। एक तो वहां की जो झील है उस झील से पानी छोड़ा गया क्योंकि उसमें भी पानी की मात्रा बहुत अधिक हो गई थी। दूसरा वो है कि शहर से जल निकासी का जो यंत्र बन तैयार किया गया था, एक सिस्टम तैयार किया गया था, वो अभी तक नहीं बन पाया है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। फिर आपने देखा कि जो तेजी से शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण होने के कारण अब वहां रहने के लिए जमीन चाहिए, तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि वहां की जितनी भी पानी वाली जगह थी उन सबको, पानी के निकलने की जो जगह थी उनको आवासीय क्षेत्रों में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस एडिटोरियल में लिखा है कि ये तो बेसिकली चेन्नई जो है वो दलदल कक्ष भूमि और जल मार्गों पर ही बसा हुआ शहर है। शुरू में जब प्लान किया गया था तो इसकी कैपेसिटी 6.5 लाख के आसपास ही निर्धारित की गई थी, और आज इसकी कैपेसिटी लगभग 80 लाख के करीब वहां लोग रह रहे हैं। साथ ही वहां लगभग 150 जलाशय थे, वाटर बॉडीज थी, जिसमें से घट करके अब सिर्फ 27 रह गई हैं, यानी बाकी सभी वाटर बॉडीज को खत्म करके और वहां पर आवासीय कॉलोनियां बना दी गई हैं। तो निश्चित रूप से अब पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के संकट आने स्वाभाविक है। तो मित्रों इसके माध्यम से आप शहरीकरण की भी थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं कि किस तरह से बढ़ता हुआ शहरीकरण भी आपदा के का कारण बन रहा है। वो दोस्तों चूंकि आज न्यूज में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा आपदा प्रबंधन के बारे में बातें करना चाहूंगा। आप अगर अपना सिलेबस उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपदा प्रबंधन जो टॉपिक है वो आपके जनरल स्टडीज मेंस में के थर्ड पेपर में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर साल इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाँ ये बात अलग है कि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, अभी तक जो क्वेश्चंस खासकर 2013 और 2014 में जो पूछे गए हैं नए पैटर्न के अंतर्गत मैं बता रहा हूं, तो उसमें हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे लगता है कि यहां अगर मैं उन क्वेश्चंस की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपदा प्रबंधन पर जो आप तैयारी करेंगे वो किस एंगल से की जानी चाहिए, और किस तरीके से अभी जैसे कि तमिलनाडु में जो जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अलग अलग एजेंसी आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ वहां रेस्क्यू के काम में, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, जिसके बारे में कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था। तो वहां से आप कैसे अपने लिए तथ्य निकालेंगे? फ्रेंड्स, 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको वो पढ़कर सुना रहा हूं। क्वेश्चन था, विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है। प्रशासक के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली में किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे? 200 वर्ड्स। मैं एक इंग्लिश में पढ़ देता हूं। हाउ इंपॉर्टेंट आर वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट आर की एरियाज दैट यू वुड फोकस ऑन इन ए डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम? 200 वर्ड्स, 10 नंबर का ये एक क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे कि इसमें सीधे सीधे थोड़ा सा तो सैद्धांतिक पक्ष है, और वो सैद्धांतिक पक्ष ये है कि सेंसिटिविटी कितनी जरूरी होती है और जो रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता है, तो पहले से आप कैसे उस रिस्क को देखते हैं। जैसे मित्रों, अभी जब हम तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो ये बताया जा रहा है कि पहले से ही ये घोष मौसम विज्ञानियों ने यह बता दिया था कि यहां बहुत तेज बारिश होने वाली, बहुत तेज बारिश होगी। और अब यह कहा जा रहा है कि प्रशासन ने जिस तरीके से इसकी तैयारी की जानी चाहिए वो तैयारी नहीं की, शायद इतनी बारिश का अनुमान न हो, और उसका नतीजा फिर यह होता है कि जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। मुझे अच्छे से याद है कि साल भर पहले जब उड़ीसा में तूफान आना था, और तूफान की जब पहले से बता दिया गया कि ये दो दिन में उड़ीसा के तट पर पहुंच जाएगा, तो वहां के प्रशासन ने तट के किनारे बसी हुई जितनी भी पॉपुलेशन थी उन सबको दो दिन के अंदर वहां से हटा दिया। तूफान आया लेकिन बहुत कम कैलेमिटीज हुई, नहीं के बराबर एक तरीके से कैलेमिटीज हुई, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को देख लिया था। और डेफिनेटली बिना संवेदनशीलता के तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। लोगों को बचाना, सबसे पहले जीवन को बचाना, इसके बाद संपत्ति को बचाना, इसके बाद सिस्टम को बचाना, ये बिना संवेदनशीलता के संभव नहीं होता है। तो ये दोस्तों 2013 का क्वेश्चन था, इससे आपको अनुमान लगा होगा क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं। अब मैं 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में आपको बता रहा हूं। 2014 में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, वो था सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारंभ और कमजोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ब्रैकेट में दिया हुआ NDMA के सितंबर 2010 मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एलनीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की कार्य विधियों पर चर्चा कीजिए। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। ड्रॉट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजास्टर इन व्यू ऑफ इट्स स्पेटल स्पैन, टेम्पोरल ड्यूरेशन, स्लो ऑनसेट एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑन वल्नरेबल सेक्शन विथ ए फोकस ऑफ द सेप्टेम्बर 2010 गाइडलाइंस फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्कस द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू डील विद द लाइकली एल नीनो एंड ला नीना फॉलआउट्स इन इंडिया। अब आप देखिए कि शुरू का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही सामान्य सा है, एक स्टेटमेंट है, एक भूमिका का काम कर रहा है कि सूखे को भी आपदा माना गया है क्योंकि इसका गरीब वर्गों पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, किसी किसी हिस्से में यह होता है और लगातार लगभग यह होता चला जा रहा है। अब फिर उन्होंने जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसकी अभी चर्चा आप लगातार न्यूज में सुन रहे हैं, उसने 2010 में अपनी कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि जब भी इस तरह की आपदा की स्थिति आएगी तो इन इन आधार पर हम उनका मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने दिया कि उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, तो वो गाइडलाइन आपको केवल मालूम होने चाहिए, यहां आपको लिखना नहीं है कि उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अब आप अल नीनो और ला नीनो अगर भारत में उसका प्रभाव पड़ना है तो आप निपटने के लिए क्या तैयारियां करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से वो सारे के सारे एक तरह से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ गया। आपको इवेंट दे दिया गया, इवेंट में दे दिया गया एल नीनो और ला नीना, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा देश में, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती, कभी एकदम सूखा पड़ जाता है, ये सारी चीजें। भारत का जो मौसम है वो काफी डिस्टर्ब है और ये माना जा रहा है कि उसके पीछे ये दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उनको लेकर के फिर अब आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने हैं। तो मित्रों, इस तरीके से आपदा प्रबंधन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि अभी आप जो तमिलनाडु के बारे में जो न्यूज सुन रहे हैं, जो न्यूज अखबारों में पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की चीजें आपकी पकड़ में आने लगेंगी। एक प्रैक्टिकल आपको एक फील हो जाएगा कि क्या क्या किया जा रहा है, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप डेफिनेटली फिर व्यावहारिक रूप से लिख सकेंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि प्रशासक के रूप में आपको करना, और अभी आप प्रशासक बने नहीं हैं तो वो तो अनुभव बाद में आएगा। अभी तो आपको दूसरे ही जो प्रशासक कर रहे हैं उनके अनुभवों को अपने अनुभव में तब्दील करना पड़ेगा और तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाएंगे। मित्रों, इसके बाद जो एक छोटी सी खबर थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल शपथ ली है, इसके बारे में खबर थी। और फिर जो दूसरी छोटी छोटी खबरें थी वो सच पूछे तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो हमारे एक रूटीन में चीजें चलती रहती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के अखबारों के क्लिपिंग्स पर। एक एडिटोरियल कमेंट है दैनिक भास्कर में और खासकर वो तलाक के मामलों को लेकर के है, और इससे आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो विमेन एम्पावरमेंट है उसका मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। हुआ यह है दोस्तों कि एक हस्बैंड वाइफ ने एक तलाक की सहमति दे दी थी और दोनों सहमति से तलाक के लिए तैयार थे, लेकिन और खासकर पत्नी को 12.5 लाख रुपए भी पति ने दे दिए, लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार थी, शायद कैंसर था उनको। ऐसी स्थिति में उनकी बीमारी को देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, चूंकि अभी ये बहुत ज्यादा बीमार हैं इसलिए अभी तलाक नहीं दिया जा सकता, ये ठीक हो जाएं इसके बाद तलाक पर सहमति पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि उसमें यह माना कि हो सकता है कि इस बीमारी के कारण ही कि मतलब पीछा छुड़ाने के लिए वो तलाक पति जो है तलाक दे रहा हो। तो एक यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों वो ये है कि कानून ये कहता है कि अगर दोनों की सहमति है तो तलाक हो सकता है, होता ही है, दिया ही जाता है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि न्यायालय ने उस कानून को किनारे रख करके यहां भावनात्मक मुद्दे को या कह लीजिए जो मानवीय मुद्दा है उसको ज्यादा अहमियत दी है। तो ये एक प्रकार से ये मानकर चलिए कि कानून को लागू करने का आपको एक नया पक्ष दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, दूसरी क्लिपिंग इंडियन एक्सप्रेस की है और इसका टाइटल है मिनिस्टर वर्सेस ऑफिसर, या आप इसको कह लीजिए कि पॉलिटिक्स विथ वर्सेस प्रशासन। आपको मालूम है कि हरियाणा में एक घटना घटी थी, 2010 बैच की आईपीएस अफसर थी संगीता, और किस तरह से जो मिनिस्टर थे वहां के शराब बिक्री के मामले को लेकर के पब्लिकली दोनों में बहस हो गई और उसका नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे के अंदर फिर आईपीएस ऑफिसर का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। ये एक घटना घटी थी, उस घटना को लेकर के इंडियन एक्सप्रेस में अपनी तरफ से एक छोटा सा आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात वैसी तो नहीं कही गई है, लेकिन एक जो बात आई है वो ये कि दोनों ने ही जो गरिमा होती है, एक मिनिस्टर की गरिमा होती है, पॉलिटिशियन की गरिमा होती है और एक ब्यूरोक्रेट्स की भी गरिमा होती है, दोनों ने अपनी उन गरिमाओं का पालन नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मित्रों, इसको आप बहुत अलग अलग एंगल से जांच पर रख सकते हैं। राजनीति किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग करती है आप इस रूप में भी देख सकते हैं, इस रूप में भी देख सकते हैं कि अगर प्रशासन इस तरह से राजनेताओं का अपमान करने लगे, राजनेता तो पब्लिक के लोग होते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, तो फिर एक तरह से केओस की स्थिति बन सकती है। तो कई एंगल इसके हो सकते हैं। नो डाउट कि एक सिविल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है जिसके तहत एक सिविल सर्वेंट से एक बहुत ही एक मर्यादापूर्ण व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है, वो भी एक एंगल हो सकता है। अब अलग अलग एंगल के आधार पर आपको मैं एक कंटेंट देना चाहूंगा, और वो ये है कि कोर्ट ने खासकर इस तरह के जो आपस में टसल्स हो जाते हैं पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, उसको देखते हुए एक अपनी रूलिंग दी थी, एक रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि वो हर स्टेट अपने अपने सिविल सर्विस बोर्ड बनाए, उसमें जो चीफ सेक्रेटरी होंगे उसके हेड होंगे, और वो फिर निर्धारित करेगा कि किसका कब कब स्थानांतरण किया जाना चाहिए, और स्थान जो अगर किसी ऑफिसर को कहीं पोस्ट किया जाता है तो उसकी उसका जो टेन्योर है फिक्स होना चाहिए कि बिना बहुत इंपॉर्टेंट रीजन के उसे वहां से हटाया नहीं जाना चाहिए। ये बात उसमें कोर्ट ने कही थी। बहुत से राज्यों ने सिविल सर्विस बोर्ड स्थापित कर दिए हैं, लेकिन सच पूछे तो वो उस तरीके से फंक्शन फिलहाल कर नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, ये एक घटना थी। एक आर्टिकल है दैनिक जागरण का, आज खासकर संविधान को लेकर के अभी जो बहस हुई है संसद में उसको आधार बनाकर, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है, और लिखने वाले सुभाष कश्यप हैं, आपने उनकी किताब पढ़ी होगी, हमारा संसद उनकी किताब है, और ये सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के, और नो डाउट के संवैधानिक मामलों के तो विशेषज्ञ ही है। इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो संविधान दिवस जो मनाया गया, ज्यादा अच्छा होता कि इसको एक संवैधानिक साक्षरता का नाम दिया जाता और हमारी जो पब्लिक है उसको संविधान के बारे में साक्षर किया जाता कि समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनके बारे में संविधान क्या कहता है, और साथ ही जो उसमें मूल कर्तव्य जो बताए गए हैं, 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, उनकी भी उनको जानकारी दी जाती, क्योंकि अधिकारों की जानकारी तो सबको होती है लेकिन कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती। मित्रों, इसके बाद दो और क्लिपिंग्स हैं जो बिजनेस स्टैंडर्ड की हैं, के हैं, वो आप देख लेंगे, हिंदी में है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वो आप पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। एक बहुत ईमेल मेरे पास महत्वपूर्ण ईमेल आया है दोस्तों, वो प्रशांत मवानी का है, जो राजकोट से हैं, वो लंदन में पढ़े हुए हैं और ये सेकेंड बैच के हमारे स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने अपनी एक घटना का जिक्र किया है, और वो ये कि उनके पिता को अचानक जब बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े तो किस तरीके से बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े मेंटल पावर के साथ उन्होंने उस स्थिति का सामना किया और सारी चीजों को सेट राइट किया। उनको ये जो ताकत मिली, उनका कहना है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान 15 दिन की उन क्लासेस का रहा कि वो अपने को मेंटली इतना स्ट्रांग रख सके, बैलेंस बना करके रख सके। और बाद में उनके पिता ने प्रशांत की तारीफ भी की, डेली ऑडियो गाइडेंस का रहा है, और इसके अतिरिक्त उनकी अपनी भूमिका तो रही ही है। तो प्रशांत, इसके लिए मैं आपको बहुत 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 बधाई देता हूं कि आप इतने स्ट्रांग, अपने अंदर स्ट्रांगनेस आप पा रहे हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ी तो आपने प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी तरह से आपको खूब शक्तिवान बनाए। मित्रों, कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है जिससे हम निपट न सकें, जिसका हम मुकाबला न कर सकें। बस हमें अपने जो हमारा जो आंतरिक संतुलन है, जो मानसिक संतुलन है, वो हमें बनाए रखना चाहिए। तो मित्रों, आप लोगों के इस तरह के मेल से, सच पूछे तो मुझे इस बात का यकीन होता है और बढ़ जाता है कि जो ये काम किया जा रहा है वो आप लोगों के जीवन में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो रही होगी। मित्रों, इसके अतिरिक्त भी बहुत से मेल आए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, सिद्धार्थ तिवारी जो रायबरेली से हैं, अखिलेश कुमार, बिंती अग्रवाल कोरिया छत्तीसगढ़ से, हमारे फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रही हैं, पंकज यादव इंदौर से हैं, जय कृष्ण कुमार झारसुगड़ा से हैं, हिमांशु अग्रवाल झांसी से, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार से, आनंद मोहन न्यू दिल्ली से, पवन हैं उघाटशिला जमशेदपुर से हैं, और मृदुल पटेल रामनगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं अब इजाजत चाहूंगा, दो दिनों के बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।